ने जब उड़ना सीखा। बच्चों, अहमद अपनी क्लास में सबसे जहीन लड़का था। उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब, जोग्राफिया और साइंस तमाम मजमूनों में अहमद सबसे ज्यादा नंबर लाता और यही वजह थी कि हर साल अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता। इस साल भी नतीजा निकला और अहमद अपनी क्लास में अव्वल आया तो उसके दोस्त असलम ने मुबारकबाद दी।
भाई मुबारक हो अहमद, इस साल भी तुम्हें अव्वल आया।
यार अहमद, तुम इतने नंबर लाते कैसे हो?
हर मजमून में 80 के ऊपर कमाल है।
मास्टर साहब से दोस्ती करनी है, ये चोरी में इनका चक्कर है।
अच्छा बेटो, मजाक छोड़ो, ये बताओ अहमद कि इस बार छुट्टियों में क्या करने का इरादा है?
सर, मैं अपने घर के लिए अभी से गट को पढ़ाई शुरू करूंगा और इसके अलावा क्या कुछ तजुर्बा करूंगा।
क्या तजुर्बा?
चिड़ियों की तरह उड़ने का।
उड़ने का?
हाँ, क्यों नहीं। मेरे साइंस के मास्टर साहब ने बताया था कि किसी ऊंची जगह से इंसान अगर छलांग लगाए और अपना तवज्जो ठीक रखे तो चिड़ियों की तरह उड़ सकता है।
यार तुमने ये बातें हमारे समझ में नहीं
आती। मुझे तो यकीन भी नहीं होता। यकीन तो तब आएगा जब तुम लोग मुझे उल्टा देखोगे। क्या समझे?
यार मैं तो अब घर जाता हूँ, मुझे तो रिश्ता भूल जा रही है।
अच्छा भाई,
अपने अपने घरों पर चले गए। अहमद भी अपने घर आ गया। अम्मी, अब्बू और तमाम लोगों ने उसको मुबारकबाद के साथ साथ बहुत सारे तोहफे भी दिए। रात को खाने के बाद अहमद सोने के लिए गया तो उसने यास्मीन बाजी को अपने तजुर्बे के बारे में बताया।
पागल ना बनो, ऐसी बेकार बातों पर यकीन करने लगे तो अपने हाथ पांव तोड़ बैठेंगे। यास्मीन बाजी, तो क्या असलम के बने बारे तुम्हें झूठ मानते हैं? हमारी साइंस के मुताबिक गलत लिखा है। गलत सही मैं नहीं जानती, मगर तुमने आज तक किसी इंसान को उड़ते हुए देखा है? देखा तो नहीं, मगर अल्लाह ने जान तो वो तो पता है। हाँ हाँ बाबा हाँ, मछली घोड़े की तरह दौड़ सकती है, आदमी मुर्गा बन सकता है, तुम हवा में उड़ सकते हो। बस अपनी दगदग अब खत्म करो, बत्ती बुझाओ, सो जाओ जाके। अच्छा आदमी।
काफी देर के बाद अहमद को जब ये यकीन हो गया कि यास्मीन बाजी गहरी नींद सो चुकी है तो वो चुपके से उठा, बिस्तर से नीचे आया, दबे पांव कमरे से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। छत पर पहुंचने के बाद उसे नीचे की हर चीज छोटी छोटी नजर आने लगी। हवा भी तेज चल रही थी। पहले तो अहमद डर सा गया, फिर उसने अपना इरादा मजबूत किया और छत के रूम पर आ गया।
देखिए अब मैं
अहमद इस अजीब से महल की तरफ बढ़ने लगा। मगर अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे घोड़े की टापुर की आवाजें आने लगी। घोड़े की टापुर की आवाज जब करीब आई तो अहमद बिल्कुल हैरान रह गया। शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी।
हाँ, यानी कि तुम उड़ सकते हो बिल्कुल चिड़ियों की तरह। मुझे तो यकीन नहीं आता।
मैं झूठ नहीं बोलता। आप कैसे यहाँ से महल तक उड़कर दिखाओ?
हाँ ठीक है, तुम उड़कर जाओ, मैं मछली की पीठ पर बैठ कर जाता हूँ। देखिए पहले कौन पहुँचता है, मंजूर?
मुझे मंजूर है। चलिए 1 2 3।
के बाद अहमद ये देखकर हैरान रह गया कि हर तरफ लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें लगी हुई है और हर कमरा बड़ी बड़ी पिंजरे की शक्ल का है। काला आदमी बहुत सारे कमरों से गुजरकर अहमद को यह देख खाने के कमरे में पहुंचा।
मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।
उसके जाने के बाद अहमद ने दिल में सोचा,
पता नहीं इसकी शक्ल देखकर जिंदगी क्यों आती है।
थोड़ी ही देर बाद काला आदमी बहुत सारे मजेदार खाने लेकर अहमद के पास आ गया।
अहमद मियां, लो खाना शुरू करो।
अहमद भूखा तो था ही, खाना देखते ही उस पर लपक पड़ा। जब वो अच्छी तरह पेट भरकर खा चुका तो काले आदमी ने कहा,
मैं तुम्हारे लिए सब चाय लेकर आता हूँ, उसको पीकर आराम से सो जाना, सारी थकन हमेशा के लिए खत्म हो
जाएगी।
काले आदमी के जवाब देने से पहले काफी दूर से एक अजीब सी आवाज आई। थोड़ी ही देर में संग्राम वापस आ गया।
चलो अहमद मियां, तुम्हें बादशाह सलामत बुला रही
है।
हाँ डरो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, बस उनकी बातों पर ध्यान न देना। बूढ़े हो गए हैं, दिमाग कमजोर हो गया है, कभी कभी बातें करते हैं।
पागल है?
नहीं नहीं, कभी कभी दौरा पड़ता है, उनके पास ज्यादा देर तक न छहरना।
अच्छा चलिए।
दूसरे कमरे में पहुँचने के बाद अहमद की नज़र जब बादशाह सलामत पर पड़ी तो हैरत के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बादशाह सलामत का सारा जिस्म तो आदमी की तरह था, मगर हाथ पैर और सर मुर्गे की तरह। यही वजह थी कि उनकी आवाज भी बिल्कुल मुर्गे की तरह थी।
जाओ,
संग्राम के साथ खाने के कमरे में आ गया। संग्राम ने चाय दी तो उसने कहा,
मुझे तो चाय पिए बगैर ही नींद आ रही।
कोई बात नहीं, नींद आ रही है, सो जाओ, कर लेना, जल्दी भी क्या है, नींद तो मुझे भी आ रही है, आओ हम दोनों यहीं सो जाते हैं।
अहमद ने जब अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि संग्राम गहरी नींद सो चुका है तो चुपके से उठा और तभी पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। धीरे से लोहे का दरवाजा खोला और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने छोटे कमरे का दरवाजा खोला। यहाँ उसे चांदी की मेज, सोने का पिंजरा और पिंजरे में तोता नजर आ गया। अहमद की आवाज सुनकर तोता जाग पड़ा।
तू मेरे मालिक की जान ले रहा है, मैं इतनी आसानी से तेरे हाथ में नहीं आऊंगा।
कहकर तोता पिंजरे से बाहर और कमरे में चारों तरफ होने लगा। अहमद तोते को पकड़ने की कोशिश करता है।
अरे आप, मैं तुझ असलम के दरबार पहुँचूँ ना?
मगर अभी दोनों उड़ भी नहीं पाए थे कि अचानक एक जोर का धमाका और सख्त संगीन बादल मुंह के काले की तरह टूट फूट कर हवा में उड़ने लगा।
कोशिश करेगा और न ही उड़ने की दुआ मांगेगा।